नमस्कारोमि भूमित्रगणाः, स्वागतमस्तु रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे। अधुना वयं पठामः अस्माकं प्रतिरविवारस्य कार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति। ये कुछ सामान्य से शब्द हैं जो अभिवादन के लिए हम उपयोग में लाते हैं, तो इन्हें तुम स्मरण में रखना और यदा कदा इनका उपयोग भी कर लेना। तो ऐसे करते करते ही हम संभाषण कला की ओर बढ़ सकते हैं। तो आओ चलें, अब हम दोबारा भगवद गीता के पहले अध्याय की तरफ मुड़ते हैं और जहां हमने पिछले बार श्लोक छोड़े हैं वहां से आगे हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय की। तो हम अभी भी उसी प्रसंग में हैं जहां दुर्योधन द्रोण के पास जाकर के कुछ उनसे कह रहा है। तो इस प्रकार जब दुर्योधन की बातचीत गुरु द्रोण के साथ हो रही थी, उसी समय भीष्म ने युद्ध की घोषणा करने के विचार से क्या किया वह संजय आगे बताते हैं धृतराष्ट्र को।
तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्युच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान।
तस्य संजनयन हर्षम, तस्य अर्थात दुर्योधन का संजनयन हर्षम, हर्ष अर्थात आनंद,
संजनयन हर्षम अर्थात
हर्ष को बढ़ाते हुए। तो दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए कुरु वृद्धः पितामहः, जो पितामह भीष्म थे, जो कि कुरु वृद्ध अर्थात कौरव वंशियों में सबसे अधिक आयु वाले, कुरु वृद्धः अर्थात कुरुओं में सर्वाधिक वृद्ध जो पितामह भीष्म थे, उन्होंने क्या किया? तो सिंहनादम विनद्युच्चैहि, सिंहनाद किया अर्थात बड़ी जोर से शेर की तरह दहाड़ करके गर्जना की। विनद्युच्चैहि अर्थात विनद्य अधिक उच्चैहि, यह संधि हो गई। तो उच्चैहि का अर्थ हुआ बड़े ऊंचे स्वर में, और विनद्य अर्थात जो गर्जना की, और गर्जना करते हुए शंखम दध्मौ प्रतापवान, तो एक शंखनाद भी किया, शंख भी बजाया। और प्रतापवान यह विशेषण है भीष्म के लिए कि प्रतापवान भीष्म ने इस प्रकार बड़े उच्च स्वर में सिंह की तरह गर्जना करते हुए उच्च स्वर में शंख भी फूंका। और वह दहाड़ और वह शंख ध्वनि इतने प्रभावी थे कि उससे दुर्योधन का हर्ष बढ़ता गया, क्योंकि एक यह किसी शूरवीर के होने का, अपने आप को प्रकट करने का एक अंदाज होता है शेर की तरह दहाड़ना। तो जब भीष्म पितामह ने वैसा किया तो वह दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने वाला था। और आगे युद्ध भूमि का वर्णन किया गया है कि
ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्।
तो क्या हुआ कि जैसे ही पितामह भीष्म ने गर्जना की तो तत्काल चारों तरफ से नाना प्रकार के युद्ध वाद्य जैसे शंख और भेरियां बजने लगे।
तो यहाँ विभिन्न रणवाद्यों का वर्णन किया गया है, पणवानक, पणव और आनक। पणव का अर्थ हुआ ढोल और आनक का अर्थ हुआ मृदंग। तो ढोल और मृदंग बजने लगे और
गोमुख
अर्थात
जो गाय के सिंह की तरह एक वाद्य होता है जिसे रणशिंग बोला जाता है, वह वाद्य भी लोगों ने बजाए। तो इस प्रकार सभी ओर से अलग अलग तरह के रणवाद्य बजने लगे। तो उससे क्या हुआ कि सहसैवाभ्यहन्यन्त, ये लंबी संधि है, सहसा एव अभ्यहन्यन्त, तो ये सारे के सारे रणवाद्य
सहसा
एक साथ बजने लगे। उन्हें बजाने वाले जो लोग थे उन्होंने सारे वाद्यों को एक साथ बजाना आरंभ किया अभ्यहन्यंत अर्थात अभी अहन्यंत, वे बजाए गए लोगों द्वारा, उन्हें बजाया जाने लगा। और इससे क्या हुआ कि स शब्दस तुमुलो भवत, इन सारे वाद्यों से जो शब्द निर्माण हुआ अर्थात जो बड़ा भारी नाद निर्माण हुआ वह तुमुलो अभवत, वह बड़ा भारी नाद उत्पन्न हुआ।
आगे संजय वर्णन करते हैं युद्ध भूमि का और धृतराष्ट्र को बताते हैं। ततः श्वेतैर्हययुक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः अर्थात तब श्वेतैर्हययुक्ते अर्थात शुभ्र सफेद रंग के हय अर्थात घोड़ों से युक्त जिनका रथ था और महति स्यन्दने स्थितौ, महति अर्थात बड़े विशाल और स्यन्दने अर्थात रथ के अंदर रथ में, तो श्वेतैर्हययुक्ते यह भी सप्तमी है, श्वेत घोड़ों से युक्त रथ, तो रथ के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है स्यन्दन और उसकी सप्तमी विभक्ति लगी तो स्यन्दने। और चूंकि रथ का वर्णन है श्वेत हय युक्त इसलिए यह शब्द भी सप्तमी विभक्ति में आया, तो वह शब्द हो गया श्वेतैर हयैर युक्ते, तो दोनों सप्तमी विभक्तियों में है। और स्थितौ, तो चूंकि माधव और अर्जुन ये दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, तो स्थितौ यह द्विवचन का शब्द आ गया। ऐसे माधव अर्थात कृष्ण और पांडव अर्थात अर्जुन, तो माधवः पांडवः च एव, माधव ने और अर्जुन ने भी, दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः, दिव्य शंखों का शंखनाद किया। तो यहाँ दिव्यौ और शंखौ ये दोनों द्विवचन को दर्शाने वाले शब्द हैं और प्रदध्मतुः ये शंख को बजाने की बात हो रही है और चूंकि दो व्यक्ति हैं तो प्रदध्मतुः यह भी द्विवचन का प्रयोग यहाँ भी हुआ है।
तो मित्रों आज हम यहाँ समाप्त करते हैं, विरमामि अहम् अर्थात मैं रुकती हूँ, अब तुम लीना महेंदले को अनुमति दो। पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो, नमस्कार।